we will do meditation for 1.5 minutes. Please fold your palms, close your eyes and repeat after me 12 syllabus mantra. Ye 12 akshar ka mantra hai. It was chanted by a child of 5 years by name Dhruva Maharaj under the instruction of the greatest devotee Narad Muni. And within 6 months he got the direct audience of Bhagavan Vishnu. So he was living with the purpose of getting the kingdom of his father Uttanapad. But he was turned down by the stepmother Suruchi. Therefore he was approaching Supreme Lord to get his right. And within 6 months he got the audience and he got the kingdom of his father. So when a child of 5 years is eligible for getting the direct audience of the Supreme Lord, so there is a hope for all of us. So let's repeat. You please repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Now we'll repeat the prayer, the first prayer of a Mataji woman. A lady, a Mataji, is given the first place in Srimad Bhagavatam for praying to the Supreme Lord. These words were uttered by Kunti Maharani, the great devotee. And these words attracted the attention of Lord Sri Krishna when he was mounted on the chariot and was about to start for his own kingdom, Dwarka. But simply by hearing these words of Mother Kunti, he got down from the chariot, he postponed his program of going to Dwarka, and he stayed with Kunti Maharani and Pandava for over certain weeks and blessed them. So, these words of Kunti Maharani, when we utter, Krishna's attention is attracted. So, after child a mother, stri ek, mata bhagavan ko prarthna se prasan karke, usko apni aur akarshit kar sakti hai. बच्चा माता सबको अधिकार है तो हम भी आइए इस माता के शब्दों का उच्चारण करेंगे. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः.
गोविंदाय नमो नमः.
Everybody is looking for happiness within this world, but the storehouse of the happiness has a big lock at the door of entry. And if we know the code number to open the lock, then you can enter into the storehouse of transcendental bliss, happiness, ananda. Lekin number nahi yaad honge, to andar parvesh nahi ho sakta. So these panch tattva mantra is to unlock the storehouse of eternal happiness. Please repeat after me. Shri Krishna Chaitanya.
Shri Krishna Chaitanya.
Prabhu Nityananda.
Prabhu Nityananda.
Shri Advaita.
Shri Advaita.
Gadadhara.
Gadadhara.
Shri Vasadi.
Shri Vasadi.
Gaura.
Gaura.
Bhakta Vrinda.
Bhakta Vrinda.
Kalapan, the transcendental sound vibration of Supreme Godhead's holy name as are taught by the creator of this universe, Brahma. For this age of Kali Yuga, on the request of Narad Muni, for the lazy, misguided, unlucky, and disturbed population of the present time in Kali Yuga, how can that be benefited? And Brahmaji uttered in Kali Santrana Upanishad these 16 syllables with three names, the mantra called Mahamantra. Please call, chant after me. Hare Krishna, Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna, Krishna, Hare Hare.
Krishna, Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama.
Hare Rama, Hare Rama.
Rama, Rama, Hare Hare.
Rama, Rama, Hare Hare.
Thank you very much. We are thankful to Jitendra Sharma Ji and Sonika Mataji for opening the doors of their house for having a transcendental gathering to discuss the glories of the Supreme Lord and to understand the purpose of living, why we are living. So, angrezi mein bolna hai. Is English okay या हिंदी में बोलना?
हिंदी
पता नहीं वो हमारा दोस्त समझेगा नहीं हिंदी अक्षय
सब आता है
अक्षय छुट्टी के दिन नहीं बोलता है कोई बात नहीं तो प्रश्न ये कहा गया है कि हमारे जीने का उद्देश्य क्या है Why are we living? Living we are living for what? काय के लिए हम जी रहे हैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए हम जी रहे हैं हम जी रहे हैं फॉर दी ब्राइट फ्यूचर हमारा उज्जवल भविष्य हो इसलिए जी रहे हैं और फिर थोड़ी देर के बाद सोचते हैं हमारा उज्जवल भविष्य नहीं हो हम मेहनत करेंगे हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य हो इसलिए जी रहे हैं हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जी रहे हैं और अगर हम जीते जी अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य देख लें तो बहुत बड़ी बात है लेकिन प्रायः हम उनका उज्जवल भविष्य देख नहीं पाते उससे पहले हम चले जाते हैं ऐसे हमारे पिता ने भी हमारा उज्जवल भविष्य सोचा था लेकिन हमारा देखा नहीं उससे पहले चला गया ऐसा है कि नहीं है समथिंग लाइक दैट ऐसे हो रहा है लेकिन हम सब सोचते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल हो इसलिए हम काम करें उज्जवल भविष्य किस चीज से होगा फिर दूसरा ये प्रश्न ये होता है कि हमारा
फ्यूचर उज्जवल कैसे होगा, हाँ हमारा कैसे भविष्य अच्छा कैसे हो, ये दूसरा प्रश्न है। तो मान्यता ये है कि हमारा भविष्य तब बहुत उज्जवल हो सकता है जब हम बहुत ज्यादा मात्रा में धन कमा लेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा, ये धारणा एक हमारे मन में बैठ गई है। लोगों को देखा देखी में ऐड भाई, पहले जमाने में लोग कहते थे हमारा भविष्य उज्जवल होगा अगर लोग हमको मानेंगे कि भाई यार अनेस्ट है, ये ईमानदार आदमी है तो इसका भविष्य उज्जवल है, इसका बहुत बड़ा सम्मान होगा। ये नेता गांधी जी ऐसा है कि धोती पहनता है और लाठी उठाता है, वो कुछ नहीं करता है, दो पैसा नहीं लेता है, इसलिए बहुत बड़ा महान है, एक एक क्राइटेरिया ये हुआ करता था। लेकिन आज जो क्राइटेरिया है वो है कि हमारा भविष्य, हमारा फ्यूचर उज्जवल कब होगा, जब हमारे पास बहुत सारा पैसा, उस बहुत पैसे की कोई अपर लिमिट आज तक किसी ने बनाई नहीं है, एक ये समस्या है भाई, कोई वेयर टू एंड भाई, उसकी कोई अपर लिमिट होनी चाहिए ना भाई, कहां तक हमारे पास धन आ जाने के बाद हम कहेंगे हमारा भविष्य उज्जवल है। इसका मतलब हमारी कितना हमारे पास धन होना चाहिए इसका हमें मालूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं है, क्योंकि हमारे डिजायर्स एंडलेस हैं, हमारी इच्छाएं असीम है, हमारी इच्छाओं का कोई एंड नहीं है। और तब वेदों में एक श्लोक आता है, एक आदमी को सिर्फ पूरी दुनिया की सारी दौलत, पूरी दुनिया के सारे, उस जमाने में कहते थे उस सारे एनिमल्स पशु बड़ा धन माना जाता था, और भोग करने के लिए सारी सुंदर स्त्रियां दी जाए तब भी वो असंतुष्ट रहेगा। वेद ने ये वाक्य कह दिया, ये वेद का वाक्य है कि गिव हिम द वेल्थ ऑफ द होल वर्ल्ड, ऑल द ट्रांसपोर्ट कार्स ऑल मॉडल्स एवरीथिंग ऑफ द होल वर्ल्ड फॉर एंजॉयमेंट वॉट एवर ही वॉन्ट्स गिव हिम बट स्टिल ही विल नॉट बी सेटिस्फाइड। क्यों? महाअश्नो, भगवत गीता में एक शब्द है महाअश्नो, अश्नो कहते हैं खाने को, महाअश्नो का मतलब पेटू, जिसका पेट कभी नहीं भरता है। एक बार सिकंदर एक भारत के किसी महात्मा के पास गया और कहा कि मुझे आध्यात्मिकता कुछ सीखनी है, मैं विश्व विजयी हूं लेकिन मेरे गुरु ने कहा था जब मैं आ रहा था यूनान से तो भारत में जा रहे हो तो किसी महात्मा के चरणों में बैठ के कुछ सीखना, तो मुझे कुछ सिखाइए। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, क्या चाहते हो? बोला मुझे आशीर्वाद दो कि मैं विश्व विजयी हो जाऊं, सब जगह मेरा नाम हो। बोला ये तो फिर तुमसे पहले कई विश्व विजयी हो चले गए, यहां रह तो नहीं पाओगे, तो आपको कुछ और आपके भविष्य के बारे में बोलना चाहते हैं। बोला नहीं महाराज, हमको यही सीखना है, लेकिन हम आपके पास आए, अच्छा है, अब आपको हम कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। महाराज जी ने कहा गुरु दक्षिणा देनी है तो कुछ अन्न के दाने दे दीजिए। बोला नहीं महाराज, अन्न के दाने मैं कैसे दूंगा, मैं तो इतना बड़ा राजा महाराजा हूं, कुछ हीरे मोती दूंगा? तो एक कोई ऐसा बर्तन था उठा के दे दिया। सिकंदर ने बोला इसमें दे दो जो देना हो। वो बर्तन ले गया, अपने कोषाध्यक्ष को कहा, ट्रेजर को, इसके अंदर कुछ सोने की मोहरें हीरे मोती डाल दो गुरु महाराज को देने। वो अंदर से खोला, उसने दो मुट्ठी डाली, अरे खाली पड़ा है, दो मुट्ठी और डाली खाली पड़ा है, खजाना पूरा डाला खाली पड़ा है, परेशान हो गया। बोला महाराज ये क्या बर्तन आपने दे दिया, इसमें तो सब डाला खाली पड़ा है। महाराज ने इसको उल्टा करके देखा, बोला अब देख रहा है नीचे से क्या, ये इंसान की खोपड़ी है, इसमें दुनिया डालो तभी भी नहीं भरेगा। वो इंसान के खोपड़ी का हड्डा था, वो हड्डी दे दी थी। बोला इसके अंदर डालो, क्या डालना है तुमको, जितना चाहे उतना डालो, ये भरने वाला नहीं है, ये नहीं भर सकता। तो हमारे ये प्रश्न अपने आप में बहुत बड़ा एक आश्चर्यजनक है कि हमारा भविष्य उज्जवल किस चीज को प्राप्त होने से होगा, धन से तो कितना, ये खोपड़ी भरने वाली तो है नहीं। महाअश्नो, महाअश्नो का मतलब कुछ भी दो तब भी खाली पड़ा रहेगा, और फिर खाली पड़ा रहेगा तो ईमानदारी से तो धन आएगा नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा? महापापमा, महापापमा, महान से महान पाप करना पड़ेगा। और ये समझ लो, एक पीढ़ी में जो शाहूकार हो रहा है वो ईमानदारी का धन नहीं है, निश्चित रूप से समझ लो। पा महापाप मा, क्योंकि मां अश्नो है, पेट नहीं भरेगा तो पाप करेगा। तो जो चीज की फाउंडेशन पाप से है उसका भविष्य कैसे उज्जवल होगा? जिसकी फाउंडेशन ही सही नहीं है, जो शुरू ही काम उल्टा हुआ है, उसका रिजल्ट सही कैसे आएगा? एक प्रश्न अर्जुन ने पूछा था कृष्ण से, हम तो उज्जवल भविष्य चाहते हैं, हमारा हम चाहते हैं सुख के साथ रहें, लेकिन कौन जबरदस्ती हमसे पाप करा? हम तो अच्छी तरह रहना चाहते हैं, लेकिन पाप कौन कराता है हमसे? अत केन प्रयोक्तो यम पापम चरति पुरुष, इंसान पाप कैसे करता है? अनिच्छन वार्षणेय, हे वृष्णिवर्षी, इच्छा नहीं है पाप करने की। बलादिव नियोजित, बलपूर्वक किसी ने पकड़ के पाप करा रहा है, किसी ने जबरदस्ती हमको पकड़ा है और हमको इस रास्ते में डाल दिया है। कौन हमको पकड़ के ये पाप करा रहा है? नियोजित का अर्थ होता है नाक में रस्सी डालना, जैसे बैल कोई होता है ना, गाड़ी नहीं खींचना चाहता है, बैल गाड़ी नहीं खींचना चाहता और हल भी नहीं खींचना चाहता है, क्या करते हैं? नाक में रस्सी डालते हैं, पकड़ के लगाते हैं, तब उसको खींचना पड़ता है। तो हमारे नाक में किसने डाल दिया है कि हमको पाप करना पड़ रहा है? किसने पकड़ा है? तो लोग बहुत बड़ा प्रश्न पूछते हैं, भाई शरीर तो जड़ है, अपने आप में कुछ कर नहीं सकता है, मरने के बाद तो शरीर पाप कर नहीं सकता है। जैसे लोग कहते हैं मरने के बाद तो दुश्मनी खत्म हो जाती है, भाई दुश्मनी किससे करे? शरीर से तो दुश्मनी थी नहीं हमारी, तो इसका क्या आत्मा पाप करता है क्या? और हम कहते हैं आत्मा तो शुद्ध है, सच्चित आनंद है, तो पाप कैसे करेगा? तो क्या परमात्मा पाप कराते हृदय में सबके बैठा हुआ है? भाई उसके उसके इशारे के बगैर पत्ता भी नहीं अगर हिलता है, अगर उसके आदेश के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, तो पाप कौन कराता है? तो ये दो प्रश्न पहले पूछेंगे लोग के, आत्मा पाप करता है या परमात्मा कराता है? क्योंकि शरीर तो जड़ है, क्या करेगा भाई? शरीर अपने अपने हाथ में तो कुछ नहीं कर सकता है ना। सोया हुआ आदमी कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। तो मरे आदमी के बराबर, रात को सोया हुआ आदमी मरे आदमी के बराबर है। लोग मरने से डरते हैं लेकिन रोज रात को मरते हैं। अपने तकिए के नीचे रखा हुआ हीरों का हार का पता नहीं लगता है कहां गया, कोई ले गया। पास में छोटा अपना प्यारा बेटा नीचे गिर जाए तो पता नहीं लगता है, वो पति है पत्नी है, पास में किसी का पता नहीं। मरे के बराबर रात को सोता है तो मर जाता है। और रोज का ये मौत का एक्सपीरियंस छोटा सबको होता है, सुबह उठते फिर दिन चालू होता है तो हम जिंदा हो जाते हैं, ये रोज का काम है हमारा, ये मिनी डेथ। रात को सोना छोटी सी डेथ का एक्सपीरियंस है, सुबह उठता है जहां हम काम छोड़ते हैं वहां से शुरू करते हैं। ऐसे 100 साल के बाद जो डेथ होती है वो भी एक लंबा ऐसा नींद का टाइम है, डेथ एक छोटी सी और स्लीप है, और उसके बाद जैसे उठेंगे जहां काम छोड़ा है वहां से काम आगे शुरू करेंगे। जो काम अधूरा छोड़ा था, पूरा नहीं किया था, अब मानो रात का आपने वो चने भिगा के रख दिए थे तो सुबह उठ के उसको पकाना शुरू कर दोगे, क्योंकि रात का काम आधा छोड़ा हुआ था, सुबह से काम शुरू करना है। तो जो वो जो इस जिंदगी में तो उज्जवल भविष्य के लिए जो हमने काम करके जहां खत्म हो गया है वहां से फिर दोबारा काम आगे शुरू करेंगे उज्जवल भविष्य को। तो ये हमारा ये तो चलता ही रहेगा ये प्रोसेस। ऐसे जैसे रात के वक्त सोते हैं तब हमारा दिन का किया हुआ काम सब भूल जाते हैं, 4-6 घंटे के लिए हम दुनिया से दूर हो जाते हैं, कुछ पता नहीं लगता है दुनिया का। सुबह उठते हैं तो फिर कहां कल कहां थोड़ा था, किधर है, चलो वहां से शुरू करते हैं। एग्जैक्टली ऐसे समझ लीजिए कि हमारा उज्जवल भविष्य एक जीवन के ऊपर निर्धारित नहीं है, एक जीवन के ऊपर निर्धारित नहीं है हमारा उज्जवल भविष्य, ये ध्यान में रखना चाहिए। नहीं तो इस देश में बुद्धिमान आप हो, इंटेलिजेंट आप हो, मेहनत आप कर रहे हो, और खा रहे हैं वो जो कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसे घूम रहे वो खा रहे, उनका भविष्य आपसे ज्यादा उज्जवल कैसे हो गया? मेहनत आप करने वाले, समझदार आप, पढ़े लिखे आप, ब्रेन आपका, लेकिन भविष्य किसी और का उज्जवल होता जा रहा है। क्यों? ये बहुत पुराने जमाने, एक जन्म का नहीं है, एक जन्म का होता तो सबका बराबर होना चाहिए, सबका बराबर नहीं। तो अर्जुन का ये प्रश्न के कौन पाप कराता है? शरीर तो नहीं कराता, शरीर कुछ भी नहीं कर सकता अपने आप में, शरीर तो मशीन है, एक कार है, कार अपने आप तो एक्सीडेंट नहीं करेगी ना, ड्राइवर अंदर बैठेगा तब करेगी ना भाई, खड़ी डाल गाड़ी खड़ी, किसी को मरेगा, किसी को लगेगी क्या जाके गैरेज में खड़ी हुई गाड़ी किसी को मारेगी क्या? नहीं मारेगी, तो ये गाड़ी है, किसी को नहीं मार सकती है, तो कराता कौन है पाप? ये प्रश्न है। तो क्या भगवान पाप कराता है? क्या भगवान पांचवें अध्याय में उत्तर देते हैं कि नहीं, मैं नहीं कराता हूं। नादते कश्चित पापम, मैं किसी के पाप का जिम्मेवार नहीं हूं, मैं किसी के पाप का जिम्मेवार नहीं हूं, भगवान कहते हैं। तो बोला क्या पाप का जिम्मेवार जो करता है वो है, तो पुण्य सारा भगवान आपको दे दें क्या? ये प्रश्न उठेगा ना। डॉक्टर अस्पताल में जाते हैं, ठीक होके कोई वापस मरी जाता है तो डॉक्टर बोलता है देखा हमारा कितनी मेहनत की, आपका जिंदगी बचा दिया ना। घर वालों को बोलेगा बड़े बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, हमने पता नहीं कैसे बच गया, ये हमारी बहुत बड़ा इसमें मेहनत लगा है, और मर गया। तब बाहर आके बोलेगा भगवान की इच्छा थी, हमने बहुत प्रयास किया था बचाने का, लेकिन मारा भगवान ने, बचा हम रहे थे। ये दुनिया वाले ऐसे करते हैं, अच्छा किया तो हमने किया, खराब किया तो किसी और ने किया होगा, हमने थोड़ी किया। तो भगवान ना दते कश्चित पापम, न चाहे वह सुकृति में भू, आपकी सुकृति अच्छे काम के भी मेरा कोई मतलब नहीं है, उसको उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा करोगे तो अच्छा तुम भोगोगे, बुरा करोगे तुम्हारे को भोगना पड़ेगा, अच्छे का सुख भी तुमको भोगना पड़ेगा और बुरे का दुख भी तुमको भोगना पड़ेगा, मैं दोनों का जिम्मेवार नहीं हूं। तो ये अच्छा बुरा कराता कौन है? अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम, ये तुम्हारा जो जानकारी है ना वो इस वक्त अज्ञान से ढकी हुई है। अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम, ज्ञान तुम्हारा ढक गया है अज्ञान से। तेन मोहयन्ति जंतव, उसके कारण आदमी जंतु बन जाता है। जंतु मतलब एनिमल, इंसान पशु बन जाता है। इसलिए अंग्रेज बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा मैन इज ए सोशल एनिमल, पीछे एनिमल लिखा है, मैन इज ए सोशल एनिमल, इफ ही इज नॉट सोशल देन इज ओनली एनिमल, और नो बडी सोशल नाउ एड इन दिस वर्ल्ड, कोई आदमी सोशल नहीं, हर एक आदमी अपने ही खोल में रहना चाहता है, किसी के साथ उठने बैठने को तैयार नहीं है, किसी को रास्ते में एक्सीडेंट पड़ा हो तो कोई उसको देखने के लिए तैयार नहीं है, 100 गाड़ियां पास में से गुजर जाएंगी, तो सोशल कहां रह गया? ऐसे है कि उधर खड़े हो गए तो तुम्हारे को ही पकड़ के अंदर कर दिया।
इसलिए डरता है इंसान।
नहीं, मैं सब कहने का भाव है कि ये सारा वातावरण ऐसा हो गया कि पहले जमाने में कोई सी आदमी का इंतजार करता, कोई साथी हो तो उसके साथ जाए, अभी साथी से खतरा लगता है। तो ये कलयुग का ऐसा वातावरण बिगड़ा हुआ है कि किसी के ऊपर विश्वास किया नहीं जा सकता है। एक मारवाड़ी सेठ से उसके बेटे ने पूछा कि पिताजी अपने धंधे का सीक्रेट क्या है? बाप ने बोला बेटा तो छत के ऊपर चढ़ गया। बेटा छत के ऊपर चढ़ गया, बोला कूदो नीचे, बोला गिर जाऊंगा, हड्डी टूट जाएगी, बोला मैं हूं ना तुमको पकड़ लूंगा। बच्चा ऊपर से कूदा, पिताजी थोड़ा पीछे हट गया कि नीचे गिरा, दो हड्डी टूटी। बाप ने एम्बुलेंस मंगाई, अस्पताल ले गया, 20,000 रुपया खर्चा किया, पट्टा लगाया। बेटे ने पूछा बापू आपने मेरे को पकड़ा क्यों नहीं? बोला आपने क्या प्रश्न पूछा था बेटा? बोला हमारे धंधे का सीक्रेट है। तो यही तो तेरे को सिखाना, बाप के ऊपर भी विश्वास मत करना, बाप के ऊपर भी विश्वास मत करना। अब बाप बच्चे का भविष्य उज्जवल कर रहा है। ये सीक्रेट है, कि विश्वास किसी के ऊपर मत करना। और पहले ये दुनिया चलती विश्वास के ऊपर, आज भी है, पहले ज्यादा विश्वास था। पहले जितना विश्वास था कि लोग अपनी बहू बेटी छोड़ के जाया करते थे, बाहर जाते थे पड़ोस में किसी के पास के भाई ये, और वो उसको अपनी बहू बेटी के बराबर समझता था। वो ऐसे घर हुआ करते थे गांव में जिनको कहते थे सोना चांदी ऐसे फेंक के रख जाओ, जहां रखना है तुम्हें रख जाओ, वापस आओ तो अपना लेके जाओ। उसको देखते नहीं थे मालिक। तीन पीढ़ी गुजर गई थी, एक आदमी बहुत पुराना जमाने का था, नाव चलाता था, तो राजा ने बुला के पूछा कि तुम बताओ, तुम्हारा हमारे दादा की भी देखा है गवर्नमेंट, मेरे पिताजी की देखी, अब तो मैं राजा बनाऊं, अंतर क्या है? वो बोलता है कि आपके दादाजी जब राज करते थे ना, तब मैं छोटा बच्चा था, नाव चलाता था, एक आदमी तीर्थ पे जा रहा था, हमारी नाव में बैठा था, वो कोई अपना शाल भूल गया था, दो तीन महीने के बाद तीर्थ से आया, हमसे पूछा आपकी नाव में शाल तो नहीं है? हमने बोला देखिए अगर होई गई तो यहां पड़ी होगी, हमने तो नहीं उठाई, मैंने देखा उसने अपनी शाल पड़ी थी, वो लेके चला गया। बोला आपके राज में अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं, अचानक मेरा बेटा ही काम करता है, मैं कल ही गया था नाव में उसके साथ, आदमी उतरा नाव से उधर गया, वापस आया 15 मिनट के बाद, बोला मेरा यहां कुछ रह गया है, मेरे बेटे ने उसको छुपा दिया। बोला कहां से आया, तुम ले गया होगा, मुझे क्या पता है? बोला तेरे दादा के जमाने में 3 महीने तक चीज वहीं पड़ी होती, और आपके जमाने में 15 मिनट के आदमी इतना बेईमान हो गया, उसको बताने को तैयार नहीं। कि इतना मानसिकता में लोगों के परिवर्तन आ गया। तो ये क्यों आया है? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। जो हमारा आत्मा का, जो आत्मा अपने आप में ज्ञानवान है, सच्चित आनंद, चित्त का मतलब सब कुछ जानने वाला आत्मा सच्चित आनंद है, लेकिन उसके ऊपर अज्ञानता का पर्दा चढ़ गया। मैन एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटी में, पशु के काम में ज्यादा प्रवृत्त हो गया है, मानवता के जो मूल्य है उनको भुला चुका है। अमेरिकन साइंटिस्ट कह रहा था हमने स्पेसशिप बनाई है, मून पे जा रही है। यूरोपियन कह रहे थे हमने सब मेरीन बना रही है, समुद्र के तले में क्या है ढूंढ सकते हैं। भारत का महात्मा उसी भी जहाज में जा रहा था, पूछा आपका इन्वेंशन क्या है? बोला आकाश में पशु उड़ते हैं, आकाश में पक्षी उड़ते हैं, समुद्र में मगरमच्छ तैरते हैं, लेकिन हमारा तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि दो पांव से इंसान बनके इस धरती के ऊपर कैसे चले। दो पांव से इंसान बनके इस धरती के ऊपर चलना बहुत मुश्किल है। एक महात्मा था, एक आदमी आता था तो उसको कहता इंसान बनो, मानव बनो, मानव भव। एक बार बच्चों के साथ चला गया, मानव बन, तो घर वाले को बहुत गुस्सा आया, बोले ये क्या माम को समझता है, मानव बन कहता है कि हमको इसको मानव नहीं लगते क्या? ब्रो डांट पति को, बोला कैसे महात्मा के पास जाते, ये मानव बन कहता है, ऐसी कैसी आशीर्वाद है? वापस जाके उसने बोला घर में गुस्सा महाराज हो गया, झगड़ा हो गया, आपने ऐसे क्यों कहते मानव बन? महाराज ने एक चश्मा दिया, हमारा ले जाओ, तुम घर में जाके इसको पहनना, तुम्हें पता लग जाएगा। घर में आया, बड़ी सुंदर पत्नी दूर से आ रही, दरवाजा खोला, अच्छा लग रहा है ऐसे चश्मा ऐसे पहना, तो शायद शेरनी जैसे लग रही है, चश्मा उतारा तो सुंदर लग रही है। पर वो क्या गया, चश्मा दिया पत्नी को, तो अगर आप पहनो तो, पत्नी देख रही है पिता आप आ गए महाराज से, बहुत अच्छा बैठिए, चश्मा पहना तो बेल जैसा दिख रहा है। इतने में दूर से बच्ची आ रही थी, चश्मा ऐसे करके लग गया था, वो बिल्ली की तरह मैं इधर से कूद रही हूँ, उधर से बच्चा बंदर की तरह कूद रहा है, ये चश्मे को देख के परेशान हो गया। महाराज को वापस चश्मा, महाराज अपना चश्मा वापस ले, क्यों भाई? महाराज आप ठीक कह रहे हैं, हम सिर्फ शक्ल में आदमी लग रहे हैं, बाकी हमारे काम आदमी जैसे नहीं दिख रहे, हमने एक दूसरे को अच्छी तरह से परख लिया। आहार निद्रा भय मैथुन्य पशु भी समाना, ये नीति शास्त्र कहता है, खाना आहार निद्रा सोना, आहार निद्रा भय, अपनी रक्षा के लिए कोई न कोई योजना बनाना, मैथुन्य विवाह करके बच्चा परिवार चलाना, ये तो पशु भी करते। तो इंसान में है और पशु में, तो ये चार प्रोपेंसिटी एक जैसी है, कोई अंतर तो है नहीं दोनों में। पेट ही तो भरना है, रोटी थाली चांदी की थाली में खाओ अथवा रोड के ऊपर बाहर फेंक दो, लेकिन दो रोटी खा के पेट भरना है ना। सोना तो कोई खा नहीं सकता। अधिक क्या चीज है इंसान में? धर्म अधिको विशेष, धर्म विशेष है। अगर धर्म का आचरण कोई करता है तो विशेष है, नहीं तो पशु में और इंसान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं, न मैं किसी के पाप का जिम्मेवार हूं, न किसी के मैं पुण्य का जिम्मेवार हूं। पाप करोगे तो आपको भोगना पड़ेगा, पुण्य करोगे कभी तो आपको ही उसका फल मिलेगा। लेकिन आदमी पाप करता क्यों है? क्योंकि उसका ज्ञान अज्ञान के द्वारा ढका गया है। तो जीव आत्मा का ज्ञान कैसे ढक गया है? क्या वो पाप करता है क्या? तब श्री कृष्ण के वचन भगवत गीता के पांचवें अध्याय में, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकम सृजते प्रभु। जीव आत्मा न कुछ करता है न कराता है, न कर्म फल संयोगम, और न कर्म के फल की भी दलाली करता है। संयोगम कर्म फल की दलाली करना, इसका फल उसको ये नहीं करता है। तो कौन कराता है? स्वभावस्तु प्रवर्तते, जो स्वभाव है, स्वभाव का मतलब नेचर, ये पाप कर्म हमारा नेचर कराता है। ये नेचर कहां से मिला? प्रकृति से मिला। प्रकृति के तीन गुणों से हमारा नेचर बनता है। कई जन्मों से हमारा भविष्य इन तीन गुणों के चक्कर में आगे पीछे हिलता रहे। जब आदमी रजोगुण में होता है तब लोभ होता है, और तब ही कहता है कि पैसे कमाने से शायद हमारा भविष्य अच्छा होगा। रजो रागात्मक लोभ संगेन बंधनात्, रजोगुण में लोभ होता है, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, ये रजोगुण की प्रवृत्ति है। अब भगवान श्री कृष्ण का उत्तर सुन लीजिए, कौन पाप कराता है? भगवान कहते कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण से उद्भव पैदा होता है। क्या? काम क्रोध, ये रजोगुण से। तो इस जस जब हमारी हमारा स्वभाव रजोगुण में ज्यादा प्रवृत्त होता है तो उससे इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, कामनाएं उत्पन्न होती हैं। कामनाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध होता है, और ये दोनों कहां से उत्पन्न होती है? रजोगुण से। इसलिए भगवान ने तो दूसरे अध्याय में अर्जुन को कह दिया, निस्तुर गुण भव अर्जुन, तीन गुणों से ऊपर उठ जा। तेरा भविष्य उज्जवल करना है तो तीन गुणों में जब तक रहेगा तेरा भविष्य उज्जवल हो नहीं सकता। ये ऊपर नीचे ऐसे चलता रहेगा, वेव जैसे समुद्र की है। सत्वगुण में जाओगे तो ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्व स्था, सत्वगुण में रहोगे तो स्वर्ग लोक में जाओगे। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुण में रहोगे वापस धरती के ऊपर आओगे। अधो गच्छन्ति तमसा, तमोगुण में जो है वो नीचे चले जाएंगे। तो ये तीन गुणों के अंदर जब तक रहोगे ऊपर नीचे चलते रहोगे, ये गाड़ी ऐसे चलेगी। तेतं भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विचन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुपर्पणा काम कामा गता गतं। आते जाते हैं, कामनाएं पूरी करते हैं, बहुत बड़ा यहां अच्छा काम करते हैं, स्वर्ग में भोग करते हैं, फिर वापस आते हैं, काम खत्म हो जाता है तब फिर और काम करते हैं, फिर जाते हैं, ये आना जाना चलता रहता है। तो ये रजोगुण सतोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों का प्रभाव जब तक हमारे ऊपर रहेगा तब तक हमारा भविष्य शेकी रहेगा, कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। अगर हम हमारा अपना भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो इन तीन गुणों के प्रभाव को समझना पड़ेगा। पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन इज आइडेंटिफाइड बाय द मोड ऑफ नेचर अंडर विच इज वर्किंग। आदमी का जो व्यक्तित्व है कौन से गुण के अंतर्गत है उसे पहचाना जाता है। और ये रिसर्च अमेरिका के अंदर एक भक्त ने रिसर्च की कि हरे कृष्ण मंत्र जपने से आदमी का स्ट्रेस कम होता है, तनाव कम होता है। और उस रिसर्च के लिए उसने क्राइटेरिया तीन गुणों का लिया। लोगों को बोला 25 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए तुम्हारे कृष्ण मंत्र जपो, और दूसरे 20-25 आदमी को कहा आप बैठ के कोको कोला ऐसे जपते रहो दो घंटा आधा घंटा। दोनों के बाद उनके एनालिसिस किया तीनों गुणों के आधार के ऊपर, और स्टेटिकली उसने ये प्रूव किया कि जो हरे कृष्ण मंत्र जपते थे वो अगर तमोगुण के स्तर के थे जब आए थे तो महीना दो महीना जपने के बाद वो रजोगुण से ऊपर उठने लगे, लेकिन कोको कोले वाले जहां थे वहीं खड़े थे। ये उन्होंने ये प्रूव किया। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमारे को कम से कम रजोगुण से ऊपर उठना पड़ेगा, और प्राय इस वक्त जिसको ये कहते हैं कि बहुत कॉम्पिटेंट पर्सनालिटी है वो बेसिकली रजोगुण में बहुत बड़ा प्रवीण होता है, क्योंकि लोभ ही तो उसका ड्राइविंग फोर्स है, और वो लोभ कभी पूरा नहीं होता है, इसलिए पूरी दुनिया बहुत मानसिक तनाव में जी रही है, हाई स्ट्रेस में जी रही है, और सबसे ज्यादा स्ट्रेस एज है 19 से 23 ईयर्स, जो हमारा यूथ है ये हाईएस्ट स्ट्रेस में जी रहा है। उसको पता नहीं है कि हमारा भविष्य क्या है, माता पिता को टाइम नहीं है बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए, वो इतने बिजी हैं कि बच्चों को टाइम नहीं दे सकते हैं, और यूनिवर्सिटी कॉलेज में इतना कॉम्पिटेटिव, एक तो कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड हो गया, और प्लस में इतना जिसको कहे कि डिस्टर्बेंस, मेंटल डिस्टर्बेंसेस हैं कि उसको मालूम नहीं है कि मैं जाऊंगा कहां यहां से भविष्य। तो हाईएस्ट स्ट्रेस का ये पीरियड है, ये सारा तनाव, ये सारा जो वातावरण बनता जा रहा है वर्ल्ड वाइड, ये सिर्फ रजोगुण की बहुत बड़ा भारी प्रभाव है, हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ द मोड ऑफ पेशेंस एंगल्फ कर रहा है पूरी दुनिया को, ये निगला जा रहा है। सिकंदर के ये शब्द फिर याद आते हैं, अंतिम समय मर बीमार हो गया, भारत में सेना मर चुकी, मच्छरों ने काटा था, मलेरिया हो गई, मर गए। अब स्वयं बीमार था, अपने सेनापति को बुला के कहता है तेरी जिंदगी का एक महीना मेरे को दे दो, आधा राज मेरा देता हूं, मैं विश्व विजय हूं, आधा राज तेरे नाम करता हूं, एक महीना जिंदगी का मेरे को दे, मैं यूनान जाना चाहता हूं, अपनी मां को देखना चाहता हूं। सेनापति कह रहा महाराज मैं अपने जीवन का महीना तुम्हें कैसे दूंगा, बोला तुम एक दिन तेरे जिंदगी का दे दे, मैं तेरे को पूरा राज देता हूं, मैं चिट्ठी लिखूं मेरी मां को, किसी के हाथ भेज दूंगा। महाराज हम आपके सेवक हैं, हम सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन जिंदगी मेरी का एक जीवन तुमको कैसे दूं। तब सिकंदर ने ये घोषणा की थी, दुनिया वालों सुनो, मैं विश्व विजयी सिकंदर, दुनिया का एक अकेला एक छत्र राजा आज आपको बताना चाहता हूं, जिस जिंदगी को लगाकर ये मैंने दुनिया पूरी को फतेह किया था, विजयी हुआ था, आज ये दुनिया दांव पे लगा, ये एक दिन नहीं मिल रहा है जिंदगी का, पूरी जिंदगी की कमाई मेरी आज दांव के लगाता हूं, एक दिन जिंदगी का नहीं मिल रहा है, इसलिए ये बात सुन लो दुनिया वाले। और अपने सेनापति को कहा देखो जब मेरे को कब्र में डालो तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखना कि दुनिया देखे कि सिकंदर खाली हाथ दुनिया से गया। ये सिकंदर की अंतिम जीवनी की कहानी है कि सिकंदर खाली हाथ दुनिया से गया, जिंदगी पूरी दांव के लगाई लेकिन एक दिन जिंदगी का नहीं मिला। तो महत्वपूर्ण तो हमारी जिंदगी है ना, इसका मतलब सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको हम कैसे रियली एंजॉय कर सकते हैं, कैसे हमको आनंद से जी सकते हैं, ये कला हमको आ जाए तो यही हमारा उज्ज्वल भविष्य है। ऐसे आपको संत महात्मा दिखाएं जिनके पास एक रुपया नहीं है, एक लंगोटे में रहते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे सुखी वो है, कुछ उनको जरूरत नहीं, कुछ नहीं चाहिए फिर भी बहुत सुखी हैं, और जिनके पास सब कुछ है उनको रात की नींद नहीं आती। तो धन हमारा उज्ज्वल भविष्य करेगा ये समझ में नहीं आता है, लेकिन दुनिया ने ये गोल बना रखा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब उत्तर दिया पाप कौन करता है और पाप करने से तेरा भविष्य बिगड़ जाता है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण से उद्भव होता है, महाश्नो महापापमा, ये बहुत बड़ा, इसका पेट कभी भरेगा नहीं, और इससे इसके द्वारा बहुत बड़ा पाप इंसान से हो जाता है। विद्य इय वेरिणम, ये जान लो तेरा सबसे बड़ा वेरी, तेरा सबसे बड़ा शत्रु ये तेरी इच्छा है, ये तेरा काम है। कहां रहता है ये मेरा शत्रु है, मुझे बताओ कहां रहता है तो मैं इसको जीतूं। मन इंद्रिय बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते, इसके रहने की जगह है मन इंद्रियां और बुद्धि। तो हमारा शत्रु हमारे ही मन बुद्धि और इंद्रियों में रहता है। आप ऐसी कल्पना कर लो, राजा है, सेनापति है, मंत्री है, सेना है, ये तीनों चीजें चाहिए ना राजा को राज चलाने के लिए। राजा के सेनापति को शत्रु ने खरीद लिया, मंत्री दुश्मन से मिल गया, और सैनिक अपने सेनापति की बात मानने को तैयार है, तो राजा क्या सुखी रह के राज कर सकता है उस राजधानी में? जिसका मंत्री दुश्मन से मिला हो, शत्रु बिक, सेनापति बिक चुका हो, और सैनिक जो है वो रिवॉल्यूशन करने को तैयार हो, बात मानने को तैयार नहीं है। जैसे जब ब्रिटिश का राज था तो हिंदुस्तान में एक बार था ना, क्या क्या उसको कहते, ये गोलियां हम नहीं चलाएंगे, क्या कहते थे उस आंदोलन को, वो कारतूस था, ये मेरठ मेरठ के मेरठ छावनी में ये किया था कि हम आपके लिए नहीं लड़ेंगे, वो चर्बी और सुअर का, वो तो कहने का भाव है कि वैसे ऐसे सैनिक तो फिर वो राज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। तो आत्मा इस शरीर में राजा है, बुद्धि इस शरीर का मंत्री है, मन सेनापति है, और इंद्रियां सैनिक है। अब मन बुद्धि और इंद्रियां तीनों में के ऊपर काम ने अपना कब्जा कर रखा है, तो अब सोचने का, सोच भी हमारी हमारे बस में नहीं रह गई, तीनों के ऊपर उसका कब्जा है। ये तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारे अंदर बैठा है, कहीं बाहर नहीं है, तो किसको किसके ऊपर पहले वार करना चाहिए? जहां बैठा है कहां पहले, कहां किसके ऊपर वार करना चाहिए, पहले किसको वश में करना चाहिए?
इंद्रियों,
हाँ बोलता है इंद्रियों को, बुद्धि को, तो तीनों को ही करना है। पहला कहां से काम शुरू करें? देखो घोड़े हैं रथ, घोड़े हैं इंद्रियां, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। लगाम तो एक रस्सी है, लगाम तो केवल एक रस्सी है, दो जगह जुड़ी हुई है, घोड़ों के मुंह में जुड़ी हुई है, चलाने वाले के हाथ में है, तो उसको वश में करना तो उन दोनों को के ऊपर निर्भर करता है। कृष्ण का क्या उत्तर है ये सुन लो। आदौ इंद्रिय व्यवस्थितो, पहले इंद्रियों को रोको जिससे काम रुक जाएगा, मरेगा नहीं रुक जाएगा। कैसे? मेरी इच्छा होती है कि मैं उठ के ये चीज उठा के जाऊं, आपकी अच्छी लग रही है, मेरी इंद्रिय आंख ने इसको देखा, मुझे पसंद है, अब मैं अपने पांव उठूंगा पांव से तब उधर जाऊंगा ना, मैं अपने पांव को बोला मुझे नहीं उठना है यहां से, बिल्कुल मैं नहीं जाऊंगा, मन कहता है वो चाहिए मुझे, लेकिन पांव से चलूंगा नहीं तो मन क्या करेगा? इंद्रिय हमारी जाएगी नहीं वहां, तो कैसे जाएगा वो? गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा है कि तीर जाना है तो बाहर जाने दो, अगर नहीं होगा धनुष तो कहां जाएगा? आपका धनुष बाण ही नहीं होगा तो तीर किसी को मार सकता है क्या? ये शरीर जो है ये धनुष है, इंद्रियां और मन बाण है, कहीं बाहर जाएगा, लेकिन आपका शरीर नहीं हिलेगा तो मन कहां जाएगा? बेचारा भटक के वापस यहीं आएगा, कुछ कर तो नहीं सकता है। आधा वो इंद्रिय, तो पहले घंटा एक जैसे सत्संग में बैठे, ये इंद्रियों को आपने जबरदस्ती रोक के रखा, तो अच्छी बातें सुनने को मिल जाती है। सुबह उठ के एक आधा घंटा एक भगवान के भजन में बैठ गए, इंद्रियों को हमने रोका, तो ये अभ्यास इंद्रियों को रोकने को तपस्या बोलते हैं। भोग से रोग होता है, इंद्रियों भोग करना चाहती हैं, परिणाम रोग है। इसलिए ऋषभदेव भागवत में कहता है तपो दिव्यम पुत्र का, दिव्य तप करो, तपो दिव्यम, दिव्य तप करोगे तो सुख प्राप्त होगा। तप से सुख मिलता है और भोग से रोग मिलता है। इंद्रियां भोग करना चाहती हैं अपने विषयों में जाकर, उसको पहले रोकोगे तो काम रुक जाएगा, मरेगा नहीं, रुकेगा, पर जही है। और आखिरी श्लोक में जही है। फिर भगवान कहते हैं इंद्रियों से मन ज्यादा शक्तिशाली, मन से बुद्धि बलवान है, बुद्धि से आत्मा ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए आत्मा का बल बढ़ाओ, आत्मा का बल बढ़ाओ तो बुद्धि आपकी सतोगुण से ऊपर उठेगी, तब फिर आपका मन भी वश में हो जाएगा, इंद्रियां भी वश में हो जाएंगी और काम रूपी शत्रु तुम्हारा मर जाएगा। भविष्य अपना अच्छा करना है तो पहले इंद्रियां अपनी वश में होनी चाहिए। जितेंद्रिय नाम इसलिए माता पिता रखते थे कि इंद्रियां वश में होनी चाहिए, तब उसको जितेंद्रिय बोलते थे। जितेंद्रिय मतलब जिसकी इंद्रियां जीती हुई है, जीती हुई का मतलब है सही रास्ते पे चलने वाले। इंद्रियां तो आंख देखने का काम करेगी, कान सुनने का काम करेगा, ये बंद नहीं होंगे काम। राग द्वेष व्यवस्थितो, व्यवस्थित करना है, जैसे घर है ना भाई, किचन का सामान किचन में रखना है, बाथरूम का सामान बाथरूम में रखना है, ये होगी व्यवस्था। लेकिन एक किचन का सामान बाथरूम में, बाथरूम का सामान किचन में, तो ये गड़बड़। व्यवस्थित का तो इसका मतलब राग भी कहीं होना चाहिए और कहीं द्वेष भी होना चाहिए। राग द्वेष व्यवस्थित हो, राग किस में होना चाहिए और द्वेष किस से होना चाहिए? शराब पीने से द्वेष होना चाहिए, नहीं पीना है, बुरा है। और राग किस से होना चाहिए? मानो राग किस से होना चाहिए भाई? किसी में तो राग होना चाहिए ना, सच बोलने में राग है, मैं तो सच बोलना चाहूंगा भाई, जीवन में कैसे अभी कष्ट आए, तो ये राग हो गए। तो राग अच्छी चीजों से राग करना है और बुरी चीजों से द्वेष करना, ये हो गया राग द्वेष व्यवस्थित हो। भगवान से राग करना है तो संसार से अपने आप वैराग हो जाएगा। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि किसी एक को छोड़ना नहीं, दोनों को चलाना है, लेकिन पहले हमारी इंद्रियां वश में होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा खतरनाक इंद्री कौन सी है? माताओं के पास तो बहुत अच्छी है वो, खतरनाक है। एक ही इंद्रिय जिसके दो काम है, सब आंख केवल देखने का काम करती है, कान के सब केवल सुनने का करता है, लेकिन ये इंद्री बोलना भी चाहती है और खाना भी चाहती है। चखने के लिए ये हमको पता नहीं कौन से रेस्टोरेंट के धक्के खिला लेती है, कहां कहां चोखी ढाणी, वो बोलते 30 किलोमीटर दूर है, बोला जाएंगे, उसकी पानी पूरी खाएंगे, उसकी कचौरी खाएंगे, ये इतना। और इस जबान ने टन्नों के हिसाब से माल खाया है और 2 मिनट के बाद इसके ऊपर चिकनाट भी नहीं रहता। अनलिमिटेड इसने टेस्ट किया, लेकिन जैसी है वैसी की वैसी, कोई फर्क नहीं पड़ा इसका। और हम इससे ऐसे इसके गुलाम है, प्रायः जो जवान के गुलाम है वो बेचारे उज्जवल भविष्य तो क्या है, ये जीवन भी सुख से नहीं जी सकते हैं। और दूसरा है इसका काम बोलना, इस दुनिया में बोलने में हम सब बहुत बड़े उधार और शाहूकार हैं, इतने बड़े धनी हैं बोलने में कि बेहिसाब बोलते हैं। कभी आप ट्रेन में इंडिया में चढ़े हो और चुप करके बैठ के सामने दो आदमी को बैठो, क्या करते चार घंटा बोलते रहते, क्या बोलते कुछ मालूम नहीं, पूरी दुनिया का झमेला उधर बैठ के करे, दुनिया पूरी दुनिया की चिंता है उसको। अब देखा, ऑल दीज वर्ड्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड व्हाट एवर यू स्पीक, ये सब अंतरिक्ष में ये शब्द आपके इकट्ठे हैं, और जब समय आएगा ना तब ऐसा इंस्ट्रूमेंट है यमराज के पास, आपके सारे रिप्ले शब्द होंगे कि आपने क्या क्या बोला है। मौनम गुह्यानाम, भगवान कहते हैं चुप रहना भी कभी आना चाहिए। ये जबान को थोड़ा सा कहते हैं, जबान को लगाम दो। इस लगाम ने घरों को बिगाड़ दिया है, घरों के अंदर झगड़े किसकी जबान के कारण होते हैं, केवल दो शब्द बोलने से सब कुछ बिगड़ जाता है, बना बनाया काम बिगड़ जाता है। तो भगवान ने इस जबान के लिए इसकी तपस्या भगवद गीता में बताई है, मीठा बोलना, सच बोलना, और वाणी की तपस्या में तीन चार बातें बताई है। वाणी की तपस्या बताइए 17वें अध्याय में क्या शब्द है, हरे कृष्णा, प्रसाद लेके जाओ, अब जबान की बात हो रही है भाई। यू हैव टू टेक प्रसाद एंड देन गो, श्योर, हरे कृष्णा, आई थिंक वी हैव अबाउट टू फिनिश, व्हाट इज द वर्ड, फाइव मिनट्स मोर, तो बस जबान सबसे खतरनाक हमारी इंद्री है। एक बार दांतों और जबान के बीच में झगड़ा हो गया, जबान और दांतों में, दांतों ने कहा 32 सैनिक खड़े हैं तब तुम अंदर माल खाती हो मजा ले रही हो, जबान मुस्कुरा के कहती है तुम चमक रहे हो ना बाहर, ये मेरी मेहरबानी है, मेरी मेहरबानी है तो तुम चमक रहे हो बहुत दूर से। तो दांत कहते देखे तुम समझती नहीं हो, कभी हमारे बीच में आती है पता लगता है ना, तो आप अपने हो इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। जवान बोलते नहीं मैं तुम्हारी रक्षा करते हैं, दांत बोले मैं रखता रक्षा हम करते हैं। जवान बोले तुम्हें देखना है, तब कोई बॉक्सर पहलवान जा रहा था, जवान ने दो गाली दे दी, बॉक्सर मुड़के मुक्का मारा, दो तीन दांत नीचे गिरे, जवान बोलते कौन रक्षा करता है जरा बताओ तो, आप करते हो या मैं करता हूं। प्रेम से दो शब्द बोलो तो शत्रु भी मित्र बन जाता है, और कड़वे दो शब्द बोलो तो अपना बेटा भी दुश्मन बन जाता है। तो ये जबान प्रियहितम स्वाध्याय सत्यम, सत्य बोलना, मीठा बोलना, स्वाध्याय करना, वाणमयम तप उच्यते, ये वाणी का तप है, ये जबान का तप है। तो जबान के दो काम है, इसको वश में पहले करोगे तो बाकी इंद्रियां अपने आप वश में हो जाएंगी। स्टार्ट कंट्रोलिंग सेंसेस फ्रॉम टंग, जबान से इंद्रियों को रोकने शुरू करना चाहिए। जबान के दो काम है, बोलना और चखना। जबान को चखने के लिए भगवान का प्रसाद दो, और बोलने के लिए भगवान का नाम जपने। एक बार एक मेरा अनुभव हुआ, कीर्तन में बहुत कीर्तन भक्त कर रहे थे आधा घंटा नाच के, मेरा अनुभव ये हुआ कि ये कीर्तन करने के बाद जो कीर्तन में नाचता है बड़े एक घंटा दो घंटा पसीना पसीना हो जाता है, उसका सबसे बड़ा लाभ भगवान तो अपनी जगह पे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, घर जाके झगड़ा नहीं करेगा, ऐसे कहते बोले इतना थक गया बोलेगा क्या घर जाके, जो बोलने की कोटा तो यही पूरी हो गई, घर जाएगा प्रसाद तो हमने यहाँ खिला दिया जाएगा, सो जाएगा, नो फाइटिंग एनी मोर। तो ये भगवान का नाम जप करते हैं तो जबान को कुछ कोटा बोलनी है वो हम पहले बोल देते हैं, तो बाकी बेकार बोलने की जरूरत नहीं है। जितना वर्क उसको करना था वो हमने पहले एंगेज कर लिया, इसलिए बोले सुबह सुबह ही जप कर लिया करो, तो जवान को मालूम है आज का काम पूरा हो गया, अब कहीं नहीं बोलना ठीक है। तो ये दो काम, भगवान का प्रसाद और भगवान के नाम का उच्चारण, इनसे एक पहली इंद्री को वश में करोगे तो दूसरी इंद्रियां अपने आप वश में होना शुरू हो जाएगी। और ये अगर एक हमने काम किया इंद्रियों को वश में करना, तो हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। फिर हम कहीं, ये इंद्रियां ऐसे खतरनाक घोड़े हैं, एक भी अगर रास्ते से भटक जाए तो खड्डे में गिरा देगी, तो हमारा भविष्य क्या उज्जवल होगा। तो ये एक इंद्रियों को अगर आप ठीक कर लिया, जित इंद्रिय हो गए, तो फिर आपका भविष्य उज्जवल है, कैसी भी अवस्था आपकी हो। तो आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए अपनी इंद्रियों को वश में रखना, जहां हम चाहते हैं वहां ले जाएं, जहां वो चाहती हैं वहां हम नहीं जाएं। बुद्धि और इंद्रियों के स्तर में जाने का अंतर आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं, फिर ये कथा समाप्त करते हैं। बाजार के अंदर माता जी कोई जाए खरीदारी करने, और जाके अगर कहे बिल्लू फलानी कंपनी की ये ब्रांड की साड़ी दो, तो ये हुआ घर से डिसीजन लेके इंटेलिजेंस से गई, लेके वापस आ गई, और जाके कहे जरा साड़ी लेनी है दिखाओ, तो दुकानदार पूरा दुकान खोल के सामने रखेगा। अब इंद्रियां क्या, ये इसका तो टेक्सचर अच्छा है, इसका कलर अच्छा है, इसका दाम अच्छा है, शी विल नेवर डिसाइड। ये इंद्रियों के लेवल पे काम हो गया, निर्णय नहीं ले सकते, और लेके आओगे फिर भी चिंता हो, इसलिए वो लेते तो अच्छी थी, इसमें हमसे जरा पैसा ज्यादा ले लिया है, लेकिन घर से निर्णय करके जाओगे हमें यही चीज लेनी है, तो आपका टाइम भी बच जाएगा, दुकानदार भी आपको बेवकूफ नहीं बनाएगा, एंड यू नो व्हाट यू हैव टू डू। इसको कहते हैं जो इंटेलिजेंस से काम करता है वो आदमी परेशान नहीं होता। तो इंद्रियों के घोड़ों को देखना, इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनको संयम के कोड़े लगे, गोविंद गोपाल गाते चलो, हरि नाम का खजाना लुटाते चलो, दुख में भूलो नहीं सुख में फूलो नहीं। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको संयम के कोड़े लगे, इनको रोकने का प्रयास करना चाहिए, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। धन्यवाद आप सबका, हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीबॉडी। और जितेंद्र जी और सोनिका आपका भी धन्यवाद, और किसी का कोई प्रश्न है तो दो चार पांच मिनट बात करें, नहीं तो नेक्स्ट प्रोग्राम तो सबको मालूम है। पांच इंद्रियां कौन सी है, आंख नाक कान तीन, ये पांच कर्म इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां हाथ पांव हैं जो चलने का काम करते हैं, ये पांच हैं, और पांच ज्ञान इंद्रियां आंख कान जबान नाक और त्वचा, ये पांच है ज्ञान इंद्रियां। और कर्म इंद्रियां हैं पांच, ज्ञान इंद्रियों को वश में पहले करना चाहिए। कर्म इंद्रियां पांच कौन सी है, क्या है? हाँ बेटा, नहीं ये विकार है, पांच कर्म इंद्रियां जिनके द्वारा कर्म होता है, हाथ पांव पेट स्टमक, खाता है ना सारा, पकाता है तब गाड़ी चलती है ना, माइंड नहीं है, उपस्थ इंद्रिय कहते हैं, जन इंद्रिय, और चार हो गए, हाथ पांव, और ये जबान उसमें भी आएगी,
जबान दो होगी इसीलिए,
दोनों में आएगी, यहाँ सब लोगों की दो जबान है भैया, एकदम जरा सावधान रहना, या एक जबान सुबह बोलते हैं दूसरी शाम को बोलते हैं,
बोलना भी दो
है। सांप की दो जबान ऐसे डबल होती है, फार्क्स, हाँ दो जबान वाला आदमी सांप के बराबर है। पांच इंद्रियों के विषय होते हैं, ये होते हैं ऐसे 15 इंद्रियों, आंख का देखने का विषय, कान का सुनने का विषय, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, ये पांच इंद्रियों के विषय हैं। पांच कर्म इंद्रिय, पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच इंद्रियों के विषय, ये 15 और 16 मन जो इन सब के ऊपर इनका शासन करने वाला है। तो इस तरीके से ये इंद्रियां हैं, इसको वश में करना चाहिए, लेकिन अपने आप वश में नहीं होंगी, लेकिन आत्मा के बल से इनको वश में, इसके विल पावर बढ़ाना चाहिए। विल जो कहते हैं ना पावर, ये आत्मा का बल है, ये आत्मा से बल आता है। तो इसलिए जो आत्म साक्षात्कार के रास्ते में आप चलते हैं, उनका विल पावर बहुत ज्यादा होता है, उनका आत्म बल बहुत बढ़ता है, उसके द्वारा इनको वश में किया जा सकता है। आर्म्स, लेग्स, उपासना, पांच कर्म इंद्रिय, पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच इंद्रियों के विषय, एक मन, पांच भूत, 16 और 5 21, बुद्धि, अहंकार, मन हमने गिन लिया पहले, 21 और 2 23, और एक आत्मा 24,
24 एलिमेंट्स,
एलिमेंट्स एक आत्मा कभी गिनते हैं उसमें, नहीं तो काल गिनेंगे।
संतोष कैसे जैसे
आपने बोला, इनकम की कोई लिमिट नहीं चाहिए, अपर लिमिट नहीं। संतोष धन जब आया तो संतोष धन, सब धन धूल समान, गज धन बज धन बाज धन, सब धन धूल समान, जब आए संतोष धन, संतोष सबसे बड़ी चीज हाथ में आ जाए ना आदमी को, तब संतोष हो जाता है। भगवान सबसे बड़ी चीज है, जिसको भगवान में मन लग गया उसको संतोष आएगा, क्योंकि सब चीजें देने वाला तो भगवान है ना, तो देने वाले को ही हाथ कर लिया जाए ना, फिर तो सबको कुछ और रहेगी नहीं ना लालसा। संतोषी लोग वही है, संतोषी सुखी है। संतोषी कौन है? संतोष, संतोष मीन्स कंटेनमेंट, 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 अपने क्राइटेरिया संतोष का, क्या संतोष का क्राइटेरिया होना चाहिए, ये एक बात है। क्या चीज हमारा संतोष, किस चीज से हमारे को होगा, क्या विचार है आपका, संतोष कैसे होगा? हाँ बेटी, भक्ति करने से संतोष हो जाएगा, मन से कंट्रोल करेंगे तो संतोष हो जाएगा। अच्छी वाले शांतस्य कुत सुखम, एक श्लोक भगवत गीता में पढ़ते हैं, उसमें शांति और संतोष शब्द है, तो शायद हो सकता है आपके प्रश्न का उत्तर उसमें मिल जाए। हाँ, कृष्ण गोविंद दूसरे अध्याय में पहुंच जाओ, ये दूसरा अध्याय 65 के करीब, ये 2 का 61-62 कहा गया, ये एक श्लोक है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजाते, प्रसन्न चेत सोय आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते, प्रसन्न चेत सोय आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो शांत हो गया उसके समझ लो के सारे दुख दूर हो गए, लेकिन वो शांत कैसे होगा, जब प्रसाद प्राप्त हो। प्रसाद सर्व दुखाना, प्रसाद, प्रसाद माने कृपा, जब कृपा हो, भगवान की कृपा हो, तो तो दुख दूर हो जाए, तो वो प्रसन्न हो जाए, तो वो शांत हो जाए। अब शांति कैसे होगी, वो कहते हैं ना अस्ति बुद्धिर अयुक्तस्य। युक्त कहते हैं जुड़ा हुआ, जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। और फिर न चायुक्तस्य भावना, और जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है उसकी भावना ठीक नहीं हो सकती। फिर न चा भाव्यंतः शांतिर, जिसकी भावना ठीक नहीं है वो शांत नहीं है। अशांतस्य कुतः सुखम, और जो शांत नहीं है उसको सुख कहां से मिलेगा। तो सुख लेने के लिए शांति चाहिए, और शांति के लिए भावना चाहिए, और भावना के लिए स्थिर बुद्धि चाहिए, और स्थिर बुद्धि के लिए भगवान से संबंध चाहिए। तो भगवान से संबंध होने से, भगवान जीवन में जुड़ जाने से आदमी की संतुष्टि हो जाती है, हर स्थिति में संतोष होता है। संतोष करने के लिए भगवान से संबंध स्थापित करना, क्योंकि उसके पास संतोष है, वो आ जाएगा जीवन में तो संतोष आ जाएगा। बाकी किसी चीज में संतोष है नहीं। अपने जीवन भगवान के साथ जोड़ना चाहिए। तो अपन यहाँ शब्द लिखा है वन फॉर वन, द सेटिस्फाइड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस थ्री फोल्ड मेजरीज ऑफ नेचुरल वर्ल्ड एग्जिस्ट नो मोर इन सच सेटिस्फाइड कॉन्शियसनेस वंस इंटेलिजेंस इज सोन वेल एस्टेब्लिश्ड। वन हु इज नॉट कनेक्टेड विद कृष्ण, भगवान के साथ नहीं जुड़ा, कैन हैव नाइदर ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस नॉर स्टडी माइंड, विदाउट विच देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पीस, एंड हाउ देर कैन बी हैप्पीनेस विदाउट पीस। तो उत्तर आपके प्रश्न का ये है महात्मा जी कि शांति और सुख के लिए, संतुष्टि के लिए भगवान जो पूर्ण है उसके साथ हमारी रिश्ता जुड़ जाएगा तो हम पूर्ण हो जाएंगे। तो फिर हमको ऊपर अपूर्णता रहेगी नहीं, अपूर्णता के कारण हमारा असंतुष्टि होती है। पूर्ण हो जाने से संतुष्टि खत्म हो जाएगी, और पूर्ण सिर्फ दुनिया में भगवान है, तो इसलिए भगवान से संबंध स्थापित करेंगे तो संतोष हो। संतोष के लिए भगवान से अपना संबंध स्थापित करना चाहिए। हरे कृष्ण।
और सर जो बोल रहे हैं चेतन जो दे रहे हैं संबंध करना चाहिए,
आपका बेटा बड़ा हो जाएगा, बेटी बड़ी हो जाएगी ना, तो एकदम जाके किसी संबंधी को ढूंढेंगे ना, जिसके साथ विवाह करेंगे, इसको संबंध बोलते हैं। हाँ, तो इसको संबंध, दुनिया में इसको संबंध बोलते हैं ना, जिससे हम अपने बेटे बेटी का मंगनी करते हैं उसको बोलते हैं हमने, हमारा ये संबंध ही है। ऐसे जीवन में भगवान के साथ संबंध जोड़ना है। और संबंध जोड़ने का मतलब है कि हर जीव का, जो जीव इस दुनिया में आया है वो भगवान का अंश है, उसका एक भगवान से नित्य संबंध है जिसको वो अभी भूल गया है। और हमारे ऋषियों ने इन शब्दों को, संबंधों को पांच रूप में रखा है, शांत रस, दास्य रस, सखा रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। भगवान से शांत रस में भगवान बड़े हैं हम छोटे, भगवान आप हमेशा आपकी कृपा बनी रहे, एक आते जाते भगवान के साथ ये संबंध के तुम मालिक हो हम तुम्हारे, एक न्यूट्रलिटी का संबंध है। लेकिन इससे ऊपर है कि हम दास हैं भगवान, हनुमान का रामचंद्र के साथ दास्य का संबंध, इसको बोलते हैं दास संबंध। भगवान के साथ संबंध है, अर्जुन का कृष्ण के साथ सखा का संबंध है, नंद बाबा अथवा कौशल्या का भगवान के साथ वात्सल्य संबंध है, और अन्य अन्य भक्तों का भगवान से प्रेम का संबंध है। भगवान से प्रेम करते हैं, मीराबाई का भगवान का माधुर्य संबंध है, गोपियों का माधुर्य संबंध है, ये संबंध है। इसको इसलिए आध्यात्मिकता शुरू होती है संबंध ज्ञान से, और इस संबंध के बाद अभिधेय है, अभिधेय के बाद प्रयोजन है, संबंध के बाद अभिधेय है। बच्चों की तो हमने केवल एंगेजमेंट की है अभी, लेकिन इसके बाद उनकी शादी होगी, ये तो उसका अभिधेय क्या, अभिधेय क्या है, शादी होनी है, शादी होगी तब सेवा करेंगी, नहीं तब तक सेवा नहीं करेंगी, अपने अपने घर में रहेंगी। सेवा कब शुरू होगी, जब जीवन में आपस में विवाह होगा फिर सेवा। प्रयोजन क्या है, फिर तो अपने को संतान चाहिए, ये प्रयोजन है विवाह का, तो प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा सटल साइंस है, ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित हो, जो कहे कि भाई मेरा और भगवान का ये रिश्ता है। एक महात्मा गया था एक गृहस्थी के घर पे, बहुत सुंदर घर था, कोठी थी, बिल्ला था। गृहस्थी को कहा ये तो बहुत बड़ा सुंदर घर बनाया। बोला माले भगवान, हम तो घर, महात्मा जी हम अपने साथ थोड़ी लाए थे, ये तो यहाँ का है, तो भगवान ने दिया है, आप लोगों की कृपा है, ये है। तो घर में फर्नीचर फिक्सचर बहुत अच्छा था। बोला ये सब बड़ा सुंदर है। बोला ये हम कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ का है, यहाँ पड़ा है। तब अंदर बच्चे थे, खेल रहे थे। बोला ये आपके सुंदर बड़े बच्चे, आपके आज्ञाकारी। बोला ये भी भगवान की देन है, हम तो इनकी सेवा कर रहे हैं। तब अंदर एक दो भगवान ऐसे घर में विराजमान थे। बोला ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। संबंध कहाँ है मेरा? संबंध मेरा इनसे है, और इनके नाते इन सबके साथ में जुड़ा हुआ। ये ग्रस्त की भावना, ये ग्रस्त की भावना है। अगर भगवान मेरे हैं, क्या रिश्ता है मेरा, ये आप देख लो आपके अंदर में। कब कब ये आपको पता लगेगा? जब भगवान की कथा सुनोगे। तो एक ऐसी कथाएं सुनते सुनते आपका किसी कथा में ऐसा मन लग जाएगा, वो ये हमारा भगवान से संबंध होता ना ऐसा। तो जिसका वो संबंध है उसके द्वारा भगवान के साथ आपका रिश्ता होगा। ये बहुत बड़ा विज्ञान है अपने आप में, और साधु लोग इसी के ऊपर अपने जीवन को पूरा इसी काम में लगा देते हैं कि हमारा संबंध भगवान से क्या है और उस सेवा में परफेक्शन कैसे करें। फिर जब ये शरीर छोड़ के जाएंगे और हमें मालूम हो गया कि हमारा क्या संबंध भगवान से है, तो फिर दूसरा जो जन्म मिलेगा उसमें एग्जैक्टली उसी काम करने के लिए जहां भगवान का अवतार हुआ होगा, जहां लीला होती होगी, उसमें हमसे वही सेवा ली जाएगी। उस रियल सर्वे जब पास हो जाएंगे तो फिर वापस जन्म मरणम से मुक्त होके उसी सेवा में, भगवान की नित्य सेवा में जाके प्रवेश करेंगे। ये विज्ञान एक बहुत दिस इज अ वेरी प्रोफाउंड साइंस, एक्सपेरिमेंटेड बाय मेनी मेनी ग्रेट रसिक भक्त, एंड इज डॉक्यूमेंटेड इन द फॉर्म ऑफ भक्ति शास्त्र। बट इट नीड्स रियली ए थारो कमिटमेंट टू गो थ्रू दिस डिसिप्लिन। और संबंध के बगैर हम कभी ऐसे कहें, जेल के अंदर आदमी एक जेल में है, जेल से आजादी हो गई, दरवाजे के ऊपर आए, लेकिन बाहर कोई लेने वाला आयो नहीं, जाऊं कहां ये पता नहीं हो, तो उसका आजाद होना किसी काम का तो नहीं है। तो बाहर जब संसार रूपी जेल से जब हम जा रहे हैं, जब यहां से बाहर निकले, घर वालों ने यहां छोड़ दिया, तो आगे किसी से हमारा संबंध नहीं है, तो हम कहां जाएं? दुबई में मां कल उतरा, मैं यहां मेरा किसी से संबंध नहीं, जानता नहीं, तो किसके पास जाऊंगा? तो पहले किसी को फोन किया होगा ना कि मैं आ रहा हूं, किसी से संबंध था तभी तो आया ना, तो संबंध होगा तब कहीं जाएंगे ना। तो ये तो मालूम है एक दिन यहां से जाना है, तो जाना है तो कहां जाना है, और जिसके पास जाना है उससे संबंध तो करना पड़ेगा ना। तो ये जानकारी पहले करनी है, फिर संबंध करना है, तब यहां से जाएंगे तो बुद्धिमान है, और बगैर संबंध और बगैर तैयारी के जाएंगे तो मूर्ख कहलाएंगे। जैसे पुराने हमारे कहावत होती थी कि माँ वो जिसकी बच्ची का जिस दिन जन्म होता है उस दिन उसके दिमाग में आता है कि लड़की को मेरे को विदा करना है, उस दिन से उसके दिमाग आता है इस लड़की के लिए सामान लेऊं, ये लड़की के लिए जेवर लेके रखूंगी, इसके सोना लेऊं, ये कपड़ा बदमे बच्ची के काम आएगा, 25 साल के बाद उसको रवाना करेगी, लेकिन 25 साल उसके दिमाग में ये होगा कि इसको रवाना करना है। और मूर्ख माँ कौन सी है, कल शादी है लड़के के, अरे जो शादी का जोड़ा लाओ, तो अच्छा आज सिलाई करानी है, मूर्ख है, तो मैं 25 साल पता नहीं था तुम्हें विदा करनी है, मालूम नहीं तुम्हें विदा करनी है, उसको हमारी भाषा में कहते हैं मूर्ख। और आजकल सारे ही मूर्ख हैं, वो सीधे जाते, सब हायर पे सामान मिलता है, सब चीज रेडीमेड मिलती है, पगड़ी भी रेडीमेड है और चूड़ीदार पजामा भी रेडीमेड है, लड़का भी रेडीमेड, लड़की भी रेडीमेड, साया भी रेडीमेड, रिश्ते भी रेडीमेड, सब हुआ पूरा, पैसा ले जाओ वापस घर आओ, बच्चा भी गया, बच्ची भी गई, राम राम, ने बच्ची माँ बाप से गई, बच्चा भी माँ बाप से गया, ये हुआ, ये रिश्ता, ये संबंध आज का दी एंड है। अरे कृष्णा, चलो टाइम आज का पूरा हो गया, देखेंगे।